बीसवीं सदी के अंत में दलित साहित्य। बीसवीं सदी का अवसान निकट है। 21वीं सदी और तीसरी सहस्राब्दी की आहटें करीब आती जा रही हैं। कैलेंडर पर 2000 शुरू होने से ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा फिल्मों या जादुई कथाओं में अलाउद्दीन का चिराग घिसने से हो जाता है। लेकिन फिर भी इंसानी समाज अपनी व्यक्तिगत जिंदगी व सामूहिक जिंदगी दोनों में ही अतीत का पुनरावलोकन करते हुए वर्तमान को समझने वह भविष्य को दिशा देने का प्रयास करता ही रहता है। एक वर्ष पूरा होने पर भी अक्सर वर्ष भर का लेखा जोखा किया जाता है। पारिवारिक जिंदगी में महीने भर का हिसाब वेतन के अनुसार किया जाता है। सप्ताह भर काम करने पर पश्चिमी समाजों में सप्ताहांत फुर्सत मनाने और आने वाले सप्ताह की तैयारी में बिताया जाता है। यहाँ तक कि पूरे दिन काम काज के बाद हम लोग कई बार अपने दिन के अनुभवों को भी सोचने व मनन के दायरे में लाते हैं। जाहिर है कि समय व समाज में बहुत कुछ परिवर्तन की संभावना नजर न आते हुए भी गुजरी शताब्दी यहाँ तक कि सहस्राब्दी का पुनरावलोकन मानवीय समाज के लिए बहुत जरूरी है, ताकि जो अपने गुजरी शताब्दी में देखे गए लेकिन पूरे नहीं हो सके उन्हें पूरा करने के लिए आने वाली शताब्दी में सोचा जा सके। वैसे कायदे से शताब्दी व सहस्राब्दी का अंतिम वर्ष 2000 बनना है और नई सदी व सहस्राब्दी की शुरुआत 2001 से बनती है, लेकिन आंकड़े में 2000 आने से ही सब लोग एक वर्ष पूर्व ही नई सहस्राब्दी के स्वागत में लगे हैं। खैर, आधुनिक भारतीय और हिंदी भाषा के साहित्य के संदर्भ में भी देखें तो दूसरी सहस्राब्दी के आरंभ के आसपास कायदे से इन भाषाओं के साहित्य की शुरुआत मानी जाती है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का लगभग सारा ही साहित्य एक सहस्राब्दी आयु का हो गया है। दूसरी ओर इन सभी भारतीय भाषाओं का आधुनिक गद्यात्मक रूप प्रायः 150 आयु का है, लेकिन कायदे से यह साहित्य अपनी आधुनिक संवेदना में 100 पुराना ही है। 20वीं सदी के शुरू से ही सभी भाषाओं में आधुनिक विधाओं ने नियमित स्वरूप ग्रहण किया। हिंदी के संदर्भ में भी देखें तो भले उपन्यास का आरंभ 1880 के आसपास हो गया था, वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक का देहांत भी 1885 करीब हो गया था, लेकिन सही मायने में खड़ी बोली गद्य व पद्य 20वीं सदी के शुरू में अपनी विशिष्ट पहचान बनाना शुरू करता है। इसलिए यदि 20वीं सदी में हिंदी साहित्य का उसकी तमाम विधाओं, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, कविता, निबंध, समीक्षा, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, साहित्यिक पत्रकारिता आदि उसकी तमाम प्रवृत्तियों व आंदोलनों, इसी सदी के साहित्य पर पड़ने वाले बाह्य प्रभावों आदि का पुनरावलोकन कर वस्तुगत आकलन किया जाए तो यह एक महत्वपूर्ण काम होगा जो आगामी शताब्दी सहस्राब्दी के साहित्य की संभावनाओं व दिशाओं को समझने का आधार बन सकेगा। 20वीं सदी के भारतीय साहित्य, जिसमें हिंदी साहित्य भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, का आरंभ राष्ट्रीय जागरण के प्रभाव में होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के माध्यम से, प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य के माध्यम से, मैथिली शरण गुप्त आदि कवियों ने अपनी कविता आदि के द्वारा इस राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाद में छायावाद व प्रगतिवाद आदि साहित्यिक प्रवृत्तियों को प्रभावित किया। 1947 के बाद प्रगतिवाद के ढलान में आने पर प्रयोगवाद, व्यक्तिवाद, अकविता आदि प्रवृत्तियों ने एक बार तो हिंदी साहित्य को कुहासे में ढका, लेकिन 7वें दशक के अंत तक वे प्रवृत्तियां कमजोर हुई व फिर राष्ट्रीय नवजागरण के दस्तक सुनाई देने लगी। इसके प्रभाव में नव प्रगतिवाद या क्रांतिकारी रोमांसवादी जनवादी आदि प्रवृत्तियां पैदा हुई और नवजागरण के प्रभाव में सदी के अंत तक आते आते दलित साहित्य भी अपना विशिष्ट स्वरूप ग्रहण करने की ओर अग्रसर है। मराठी साहित्य में 7वें दशक में उभरी दलित साहित्य की प्रवृत्ति उस भाषा के जो इस समय केंद्र में है ही, धीरे धीरे इसने अन्य भारतीय भाषाओं, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, पंजाबी आदि पर भी अपना प्रभाव जमाना शुरू किया है और सदी के अंतिम दशक में हिंदी साहित्य में इस प्रवृत्ति ने अपनी पहचान स्थापित कर ली है। 21वीं सदी व 30वीं शताब्दी का आरंभ दलित साहित्य के विकास से होगा, जबकि दूसरी सहस्राब्दी के आरंभ में ही गोरखनाथ आदि ने दलितों के स्वर को वाणी दी थी। हिंदी साहित्य के आदिकाल में गोरखनाथ, सरहपा आदि नाथ सिद्धों, मध्यकाल में कबीर, रविदास, सहजोबाई, दयाबाई आदि संत कवियों ने भारतीय समाज के सर्वाधिक प्रताड़ित हिस्सों दलितों को अपनी वाणी द्वारा मानवीय गरिमा प्रदान की। आधुनिक काल के आरंभ से ही दलित पीड़ा की अभिव्यक्ति किसी न किसी रूप में हिंदी साहित्य में होती रही है। कायदे से सितंबर 1914 की सरस्वती में हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत से 20वीं सदी की हिंदी दलित साहित्य की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद सदी के अंत तक हिंदी साहित्य में हजारों ऐसी रचनाएं रची गईं जिनमें दलितों की पीड़ा अभिव्यक्त होती रही और पिछले करीब 1.5 दशक से दलितों की समस्याओं पर केंद्रित साहित्य को दलित साहित्य शीर्षक से एक पारिभाषिक रूप भी दिया गया है। यह इस समय भारतीय साहित्य में प्रमुखता से उभरती हुई साहित्यिक प्रवृत्ति है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि दलित जागरण से ही भारत की मुक्ति संभव हो पाएगी और देश के कोने कोने से दलित जागरण की आटों का प्रभाव साहित्य में दलित साहित्य की विशिष्ट प्रवृत्ति के रूप में उभर रहा है। 20वीं सदी के हिंदी साहित्य पर व्यंगावलोकन करेंगे तो पता चलता है कि हिंदी साहित्य में दलित स्वर हमेशा ही मौजूद रहे हैं। दलित स्वरों की अभिव्यक्ति स्वयं दलित साहित्यकारों द्वारा हुई हो या गैर दलित साहित्यकारों द्वारा, लेकिन साहित्य में समाज के इस बड़े मगर उपेक्षित हिस्से को कभी उपेक्षित नहीं किया गया। हिंदी कविता। 20वीं सदी की हिंदी कविता पर नजर डालें तो देखते हैं कि सैकड़ों ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी कविता में दलितों की दशा पर अपना ध्यान केंद्रित किया है और उन पर अपनी कविताओं की रचना की है। नाथुराम शर्मा शंकर, रूप नारायण पांडे आदि कविताओं में चित्रण अछूत समस्या के रूप में हुआ है। साधना स्वराज की सफल होगी कभी होगी नहीं अगर अछूतों को न आप अपनाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रथम महत्वपूर्ण लेखक माना जाता है। उन्होंने अपने काव्य व नाटकों में छुआछूत का विरोध किया। बहुत हमने फैलाए धर्म बढ़ाया छुआछूत का कर्म। रामचंद्र शुक्ल की अछूत की आह, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रभु तुम मन की जानो, मैथिली शरण गुप्त के काव्य महाभिनिष्क्रमण में अछूत, सोहनलाल द्विवेदी कृत हरिजनों का गीत, हरिकृष्ण प्रेमी की हरिजन बंधु आदि कविताओं में राष्ट्रीय जागरण के प्रथम दौर में दलित समस्या को गांधीवाद के प्रभाव में उघाड़ा गया है। दया प्रसाद शुक्ल स्नेही, भगवती चरण वर्मा, सियाराम शरण गुप्त, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी इत्यादि शायद ही ऐसा कोई महत्वपूर्ण हिंदी कवि हो जिसने गांधीवाद व राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभाव में दलित साहित्य पर रचना न की हो। 20वीं सदी की हिंदी कविता में छायावाद और प्रगतिवाद दो ऐसे दौर थे जिनमें साहित्य सामाजिक व कलागत रूढ़ियों को तोड़ा गया और मानवीय संवेदना को केंद्र में रखकर काव्यात्मक और गद्यात्मक रचनाएं की गईं। इन दोनों युगों में करीब 40 वर्षों में हिंदी साहित्य को बेहतरीन रचनाएं हुई हैं। यदि मध्ययुग में भक्तिकाल हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में साहित्यिक दृष्टि से स्वर्णिम काल है तो आधुनिक काल में छायावाद और प्रगतिवाद का दौर साहित्यिक दृष्टि से आधुनिक हिंदी रचना का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। निराला पंत व महादेवी वर्मा की रचनाओं में दलित भावनाओं की जैसी अभिव्यक्ति हुई है वह इससे पहले मध्यकाल में ही कबीर रविदास आदि में पाई थी। निराला की वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, उद्बोधन, पंत की युगवाणी, रामधारी सिंह दिनकर की सामाजिक असमानता, बालकृष्ण शर्मा नवीन की झूठे पत्ते, रांगे राघव की अजय खंडहर में, श्री मंगल सिंह सुमन की प्रलय सृजन, नरेंद्र शर्मा की रोटियों की जंजीर, रामेश्वर शुक्ल अंचल की मंजिल, रामविलास शर्मा के सदियों के सोए जाग उठे, शील की प्रतिशोध, नागार्जुन, शमशेर, बहादुर सिंह, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, धूमिल, गोरख पांडे आदि की तमाम ऐसी कविताएं हैं जिनमें दलित मुक्ति के लिए क्रांतिकारी स्वर गुंजरित हुए हैं। नागार्जुन की हरिजन गाथा व धूमिल की मोची राम तो इस धारा के बहुचर्चित कविताएं हैं। 20वीं सदी के हिंदी काव्य में प्रबंध कविता में भी दलित परंपरा के इतिहास प्रसिद्ध नायक नायिकाओं को लेकर खंड काव्य महाकाव्यों का सृजन हुआ है। एकलव्य, शंभूक, शबरी व भीमराव अम्बेडकर कवियों के लिए सर्वाधिक प्रेरणादायक काव्य नायक हैं। सबसे अधिक प्रबंध काव्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को केंद्र में रखकर रचे गए जिनमें बिहारी लाल हरित का भीमायण, गोकर्ण लाल वरुणाकर व माता प्रसाद सागर राजवंश का भीमचरित मानस आदि शामिल हैं। एकलव्य पर आधारित खंड काव्य की रचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा व माता प्रसाद आदि कवियों के, शंभुक पर जगदीश गुप्त व शबरी पर नरेश मेहता के खंड काव्य प्रसिद्ध है। डॉक्टर अम्बेडकर के शिक्षाओं के आधार पर हजारों स्फुट कविताएं भी रची गई हैं। स्वयं दलितों द्वारा पिछले 2 दशकों में जो रचनाएं की गई हैं उनमें आक्रोश के स्वर प्रबल है। इन कवियों में ओम प्रकाश वाल्मीकि, प्रेम शंकर, एन सिंह, सोहनलाल, सुमनाक्षर, सुशील टाक भौरे, लालचंद राही, पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी, कालीचरण स्नेही, कमल भारती, श्याम सिंह शशि आदि प्रसिद्ध हैं। हिंदी के अनेक उपभाषाओं भोजपुरी मैथिली राजस्थानी आदि के लोक साहित्य में विदलित वर्ग को लेकर समृद्ध साहित्य की रचना हुई। कुल मिलाकर 20वीं सदी की हिंदी कविता में दलित दशा पीड़ा व संघर्षों की अभिव्यक्ति अनेक स्तरों पर हुई है। कथा साहित्य। यद्यपि हिंदी उपन्यास का आरंभ 1880 ईस्वी के आसपास व हिंदी कहानी का आरंभ 20वीं सदी के बिल्कुल शुरू में हो गया था, लेकिन हिंदी कथा साहित्य का सही मायनों में विकास प्रेमचंद के कथा लेखन में हुआ। उर्दू में तो प्रेमचंद की रचनाएं 20वीं सदी से पहले से ही छप रही थी। हिंदी में 1915 के आसपास उनकी रचनाएं छपनी शुरू हुई और उसके बाद अगले 2 दशक तक प्रेमचंद ही हिंदी कथा पर दृश्य पर छाए रहे। यहाँ तक कि 1936 में प्रेमचंद के देहांत के बाद भी आज तक प्रेमचंद की हिंदी कथा साहित्य विशेषतः उपन्यास के मानक बने हुए और गोदान हिंदी उपन्यास साहित्य का आज भी शिखर बना हुआ है। हिंदी कथा साहित्य में दलित व्यथा प्रेमचंद की रचनाओं में पूरी संवेदना के साथ उभर कर सामने आती है। आश्चर्य है कि जिन दिनों में रचनाएं पहली बार छपी तब इन रचनाओं को दलित दृष्टि से नहीं देखा गया। प्रेमचंद ने दलित जीवन का स्वयं अनुभव भले ही न किया हो, लेकिन दलित जीवन का इतना उनका अवलोकन और उस जीवन के अनेक गहरी तहों तक पहुँचती उनकी समझ इतनी साफ है कि वास्तव में आज जिस दलित साहित्य की इतनी चर्चा हो रही है, इसके वास्तविक पुरखों में प्रेमचंद सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथाकार है। प्रेमचंद की अनेक कहानियों सदगति पूस की रात कफन ठाकुर का कुआं चुरमाना में दलित जीवन की वास्तविकताओं की जैसी अभिव्यक्ति हुई है वह केवल सहानुभूति व करुणा से नहीं वरन सहानुभूति से चित्रित हुई है, जिसकी मांग स्वयं दलित पृष्ठभूमि से आए लेखक दलित लेखन से करते हैं। प्रेमचंद की प्रायः सभी औपन्यासिक रचनाओं में दलित जीवन का विविध चित्रण मिलता है। गोदान कर्मभूमि रंगभूमि गबन प्रेमाश्रम आदि उपन्यासों में प्रेमचंद ने सूरदास देवीदीन खटीक सलोनी मुन्नी सिलिया जैसे दलित चरित्रों को जिस मानवीय संवेदना से प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के गहरे मानवतावादी व दलित पक्षधर सरोकारों का पता चलता है। पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास बुधुआ की बेटी जो बाद में मनुष्यानंद शीर्षक से छपा में निम्न श्रेणी के दलित समुदाय के संघर्ष को प्रस्तुत किया गया है। निराला कथा साहित्य दलित चित्रण और विस्तार से हुआ है। अलका निरूपमा उपन्यासों के साथ साथ उनकी कहानियां कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिया तो दलित साहित्य की महत्वपूर्ण अंग मानी जाती हैं। प्रेमचंद के बाद के काल में भी दलित जीवन का चित्रण हिंदी कथा साहित्य में बराबर होता रहा। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा रचित उपन्यास गोली बगुला के पंख राज्ञे राघव के कब तक पुकारूं उदय शंकर भट्ट के सागर लहरें और मनुष्य अमृत राय के बीज रेणु के महिला आंचल यादवेंद्र शर्मा चंद्र के पत्थर के आंसू हजार गुणों का सवार भैरव प्रसाद गुप्त का सती मैया का चौरा रामदर्श मिश्र का जल टूटता हुआ भीष्म साहनी कृत बासंती रामकुमार भ्रमर कृत मोतिया मनु भंडारी कृत महाभोज गिरिराज किशोर कृत यथा प्रस्तावित आदि अनेक उपन्यासों में दलित समस्या किसी न किसी रूप में उभर कर सामने आई है। अमृतलाल नागर कृत नाच्यो भूत गोपाल व जगदीश चंद कृत उपन्यास त्रयी धरती धन अपना नरक कुंड में वास व जमीन अपनी तो थी ऐसी उपन्यासिक कृतियां हैं जो दलित जीवन को केंद्र में रखकर रची गई हैं। नाच्यो भूत गोपाल में उत्तर प्रदेश के मेहतर जाति को आधार बनाकर व जगदीश चंद के उपन्यास त्रयी में पंजाब के चमारों को जीवन को आधार बनाकर ऐसी रचनाएं की गई हैं जो दलित साहित्य की अमूल्य निधियां हैं। विशेषतः जगदीश चंद्र के उपन्यास त्रयी इस हद तक यथार्थ बोध की रचना है कि यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि लेखक स्वयं गरीब दलित गैर दलित पृष्ठभूमि का है। इस बीच जयप्रकाश कर्दम का उपन्यास छप्पर सामने आया है, जिसमें सहानुभूति से दलित जीवन का यथार्थ अंकन हुआ है। रमणिका गुप्ता के लघु उपन्यासों सीता और मौसी में भी दलित चरित्रों की जीवन गाथा चित्रित हुई है। हाल में हिंदी में दलित आत्मकथा का विकास हुआ है। मोहनदास ने मिश्र राय के अपने अपने पिंजरे ओम प्रकाश वाल्मीकि के जूठन आदि शीर्षक आत्मकथाओं की व्यापक स्वीकृति व चर्चा के बाद हिंदी की प्रथम महिला दलित आत्मकथा दोहरा अभिशाप शीर्षक से छपकर सामने आई है। इसकी लेखिका कौशल्या बैसंतरी है। दलित आत्मकथा के संदर्भ में पृष्ठभूमि के रूप में भगवान दास कृत रचना मैं भंगी हूँ को भी ध्यान में रखना चाहिए, जो आत्मकथा न होकर भी दलित समस्या को सृजनात्मक रूप में प्रस्तुत करने वाली कई दशक पहले छपी महत्वपूर्ण रचना है, जिसका हाल ही में पुनः प्रकाशन हुआ है। सूरजपाल चौहान की आत्मकथा तिरस्कृत भी चर्चा में है। दलित कहानी लेखकों में बहुत से नए नाम उभर कर सामने आए हैं, जिनमें सूरजपाल चौहान कुसुम वियोगी जयप्रकाश कर्दम सुशीला टाक भौरे ओम प्रकाश वाल्मीकि नैमिष राय शिवराज सिंह बेचैन, दयानंद बटोही आदि प्रमुख हैं। नाटक के गान की रचना में माता प्रसाद कृत, अछूत का बेटा व कुछ अन्य रचनाएं रची गई हैं। दलित चिंतन, आलोचना व विमर्श के क्षेत्र में डॉक्टर ध्रुवमीर, डॉक्टर तुलसीराम, डॉक्टर एन सिंह, डॉक्टर चमनलाल, पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी, डॉक्टर विमल थोराट, डॉक्टर जवरीमल पारीख, शिवराज सिंह बेचैन आदि नाम उभर कर सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों पत्र पत्रिकाओं ने भी दलित साहित्य को केंद्र में रखकर अनेक अंक निकाले हैं। रमणिका गुप्ता संपादित युद्धरत आम आदमी ने अनेक विशेषांक निकाले हैं। पश्यंती ने भी दलित साहित्य अंक छापा। दलित साहित्य वार्षिकी संपादक रूप में जयप्रकाश कर्दम भी सामने आए हैं। कुल मिलाकर 20वीं सदी के आरंभ में यदि हीरा डोम द्वारा 1914 में सरस्वती के माध्यम से छूत की शिकायत रूप में दलित स्वर उभरा तो 20वीं सदी के अंत तक आते आते यह शिकायत शिकायत न रहकर आक्रोश और सृजन बनकर हिंदी साहित्य के केंद्र में आने को तत्पर है। यद्यपि मराठी की तरह यदि हिंदी व अन्य भाषाओं में दलित साहित्य को केंद्रीय स्थान लेना है तो इसे मराठी की भांति कलागत श्रेष्ठता भी हासिल करनी होगी। समाज में भी दलित वर्ग का केंद्रीय स्थान बनाना इस साहित्य के और विकास के लिए जरूरी है। और सबसे जरूरी बात है कि दलित विमर्श में व्याप्त कुछ संकीर्णता को छोड़कर वरिष्ठ मराठी दलित लेखक बाबूराव बागुल की यह दृष्टि अपनानी होगी कि दलित साहित्य और कुछ न होकर मानववादी साहित्य ही है।